ओम शांति। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि कल्प में एक बार इस पांडव भवन में भर्ती करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और बड़े बड़े महारथियों से क्लासेज करने की भी सुअवसर मिला। और हमारे बीच बाबा के अनमोल रतन, ज्ञान गुणों की धनी मोहन सिंगल भाई जी उपस्थित है। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। भाई जी को तो हम सभी जानते ही हैं, फिर भी भाई जी का परिचय मैं संक्षिप्त में देना चाहूंगा। 1962 में जब आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तथा संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इसकी सेवाओं से जुड़े रहे। साथ ही साथ बिहार, आसाम और गुजरात में संस्था की कोई शाखाएं खोलने के आप निमित्त बने। लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1963 में आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। धनबाद इंडियन स्कूल में और माइंस में 1967 में AISM में की डिग्री प्राप्त की और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। आप राज्योग शिक्षा एवं शोध संस्थान की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। आप संस्था की मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य भी हैं। वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाव के आप चेयरपर्सन भी हैं। आप ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके निर्देशन में विंग की ओर से भारत की कई राज्य तथा नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति तथा आपदा प्रबंधन अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। भारत के कई राज्यों में कोई मेगा कार्यक्रम का निर्देशन भी किया है। आप एक अनुभवी ट्रेनर थे तथा आपने कोई विषय पर कम से कम 1000 प्रवचन भी दिए हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए 1992 में भारत सरकार के HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड में सम्मानित किया गया है और 2013 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइडल अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है, जो हम सभी के लिए एक गर्व का विषय है। और ऐसे महारथी हमारे बीच में है, फिर से भाई जी का स्वागत करते हुए भाई जी से सुनेंगे। बाबा के पालना से पड़ी पली ऐसी हमारे बीच जो महारथी भाई है, भाई जी से हम आज सुनेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।
ओम शांति। बहन जी ने परिचय तो बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया, अवार्ड भी गिना दिए, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा अवार्ड हमें मिला वो शायद रह गया। हालांकि बाद में वो कुछ बता रहे थे, कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड? साकार बाबा मम्मा की पालना, इस संगम युग का तो सबसे बड़ा अवार्ड है। इस संगम युग में साकार बाबा मम्मा की पालना ली हुई और उसमें भी एक उससे भी बड़ा अवार्ड, इससे भी बड़ा अवार्ड कौन सा हो सकता है? इससे भी बड़ा कि साकार बाबा जब अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए 18 जनवरी 1969, और जब साकार बाबा संपूर्ण बने, कर्मातीत अवस्था धारण करी, तो बाबा ने हमें अचानक ही अपने पास बुला लिया, यद्यपि हम इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे और आसाम में वहाँ पर बहुत दूर आसाम, लेकिन बाबा ने इशारा दिया आ जाओ और उड़ के आओ तुरंत। तो उड़ के आओ माने प्लेन से फर्स्ट टाइम ही 1969 में, तब हम फर्स्ट टाइम ही प्लेन में बैठे और बाबा के पास आ गए। और यहाँ 17 जनवरी 1969 को, एक दिन पहले बाबा के अव्यक्त होने से पहले यहाँ पहुँच गए और अपनी आँखों से हमें बाबा की कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण स्थिति देखने का मौका मिला। और वो ही कहें जैसे कि बाबा की अंतिम बिल्कुल बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रैक्टिकल में, क्लासेस तो सुनते हैं, लिटरेचर में भी है, बाबा की जीवन कहानी में भी है लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी व्यक्ति को देखना कि जिसने संपूर्ण रीति से बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्राप्त कर लिया हो, कर्मातीत अवस्था हो, तो ये सौभाग्य हमें मिला। तो आज की मुरली तो सबने सुनी ही होगी और उसमें भी आज की इसके ऊपर, बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर भी बाबा ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी हिंट दिए। और मैं समझता हूँ उसमें एक तो सबसे बड़ा हिंट था, कौन सा क्या था, और आज की मुरली में बाबा ने कहा, हमेशा बोलते तो हैं, दुनिया वाले भी बोलते हैं भाई रहम करो, लेकिन सबसे पहले किस पर रहम करना है, अपने ऊपर रहम करना है। तो अपने ऊपर रहम करने का मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर रहम करने का मतलब अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना और जो सही चीज है भले कितनी भी कठिन हो उस सही मार्ग पर चलना। तो बाबा ने भी सबसे पहले तो जैसा आज की मुरली में था कि, और काफी समय से बाबा कहते भी हैं, रहम दिल बनो। तो अक्सर करके रहम दिल समझा जाता है कि रहम दिल बनोगे तो दूसरे पर रहम करोगे, उसके कल्याण की बात सोचोगे, उसको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो चीज हम देंगे, अक्सर करके रहम दिल का ये मतलब समझा जाता है। वो भी सच है बात, लेकिन पहला अपने ऊपर रहम। तो बाबा ने सबसे पहले तो अपने ऊपर ये रहम किया, कौन सा रहम, कि जब हाँ ज्ञान में आने से पहले से ही, 3-4 वर्ष पहले से ही बाबा थोड़ा उपराम से होने लगे थे, और रहम दिल माने बस बाबा एकांत में चले जाते थे, एकांत भी प्रिय लगने लगा, उपराम वृत्ति हो गई, कुछ होता रहे अगर जिस चीज से मेरा मतलब नहीं है उस चीज से तो बिल्कुल ही उपराम हो जाओ। नहीं तो दुनिया की बातों में भी हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिन चीजों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है तो भी, लेकिन अभी भी कई जगह युद्ध चल रहा है, भले किसी में रशिया में, यूक्रेन में युद्ध है, हमारा डायरेक्ट मतलब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रहता है। ईरान का युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जिन चीज़ों से मतलब नहीं, उसमें हमारा टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है। तो रहम पहला यही है कि जिस चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं, अपने टाइम को और एनर्जी को सेव करें। जो बाबा, तो आज की मुरली में एक तो रहम था, दूसरा साथ में और क्या था बाबा, और क्या है, है? सुखदाम जाने का एम ऑब्जेक्ट ये बाबा का, ये था खिवैया। हाँ, जैसे बाबा खिवैया है ना, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी खिवैया बनना है। खिवैया का मतलब तो समझते हैं ना। हाँ, जैसे नदी होती है, नदी के पार जाना होता है तो जो पार ले जाता है नाविक, नाव चलाता है, उसे खिवैया बोलते हैं, और वो फिर नदी पार कराता है। इसमें भी वो मिलता है कहानी की, रामचंद्र जी जब उन्हें वनवास हुआ तो उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया, लक्ष्मण और सीता जी के साथ नदी तक आए, नदी तक उसके अयोध्या के लोग भी कुछ छोड़ने आए, फिर वो नाव में बैठे। हाँ, तो सबसे छुट्टी लेके नाविक ने नाव पार करा दी। तो जब नाव पार करा दी, नाव से नदी पार करा दी, तो उन्होंने तो जैसे राजा का संस्कार होता है, नाव पार कराई है कुछ दो, तो उन्होंने अपनी अंगूठी वगैरह उतार के उसे दी नाविक को। तो उसने लेने से मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, और प्रभु बस जैसे, तो बहुत कहा उन्होंने, सबने बहुत कहा, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा बस मेरी तो यही विनंती है कि क्योंकि ऐसा एक ट्रेडिशन होता है, आज तक भी चला आ रहा है, कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होता है ना, वो अपने क्षेत्र वाले की कोई सेवा करता है तो उससे पैसा नहीं लेता। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के बच्चे का अगर ऑपरेशन करेगा या उसको दवाई देगा, पैसा नहीं लेगा। कोई और होगा, हाँ, तो बाल काटने वाला होगा, वो दूसरा कोई आएगा ऐसे इसी पेशे वाला, उससे पैसे नहीं लेगा। तो उसने कहा मैं भी खिवैया हूँ, आप भी प्रभु खिवैया हो, तो बस आप ख्याल रखना, जैसे आज मैंने आपको नाव से पार करा दिया, आप भी हैं जब भवसागर से दुनिया को पार कराओ तो मेरा भी नंबर लगा देना, भवसागर से मुझे भी पार करा देना दुनिया के। क्योंकि पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं ले रहे पैसे, कि भाई हम और आप एक ही पेशेवर हैं, आपका भी यही खिवैया का पेशा है, मेरा भी यही है, तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ पैसा। कहते मैं कैसे हूँ भाई खिवैया, मैं तो कोई नाव वाव चलाता नहीं। तो उसने ये बात कही कि भाई आप दुनिया के भव सागर से पार कराते हो तो मुझे भी पार करा देना। इसी तरह भगवान खिवैया है, तो हमें पहले यहाँ पर मास्टर खिवैया बनना है। और मास्टर खिवैया का मतलब कि दुनिया को ये कलयुगी भव सागर से पार करने का रास्ता बताना है, और जितना रास्ता बताएंगे, अब इच्छा है कोई पार करना चाहे, कोई पार ना होना चाहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है सबको पार करने का रास्ता बताना। तो ये खिवैया, तो इस तरीके से बेहद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य के साथ वृत्ति आता है शब्द। हाँ, बेहद का वैराग्य संकल्प, बेहद की वैराग्य बुद्धि, वेरत के वैराग्य संस्कार ये सब नहीं आता, वृत्ति शब्द आता है। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्यों आता है? वृत्ति क्योंकि ये वृत्ति शब्द निकला है व्रत से। व्रत भक्ति मार्ग में भी व्रत रखते हैं ना, उपवास रखते हैं, भाई आज नमक नहीं खाएंगे, मंगलवार का दिन है, आज हनुमान जी का है, आज फलानी देवी का उपवास है, तो वो व्रत रखते हैं। तो व्रत माने दृढ़ता। तो जिस दिन व्रत रखते हैं भक्ति मार्ग में भी दृढ़ रहते हैं कि आज हमें ये व्रत रखा है, नमक नहीं खाना है या भोजन रात तक नहीं करना है, कुछ उपवास पूरा रहना है, तो उसमें दृढ़ रहते हैं। तब दृढ़ रहते हैं तो सफलता मानते हैं कि हमारे व्रत की सफलता हो गई। ऐसे ही ये व्रत से वृत्ति शब्द निकला है, तो ये वृत्ति में हमें अपने दृढ़ रहेंगे जितना वैराग्य वृत्ति में, तो अंत में सफलता मूर्त बन के हम भी इस भवसागर से भी पार हो जाएंगे और जीवन में हमें जो बाबा चाहता है विजय माला का मणका वो हम बन जाएंगे। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए एक हमें सदा ये भी रहना चाहिए बुद्धि में कि बाबा की तरह मैं भी खिवैया हूँ, बाबा खिवैया है, मैं मास्टर खिवैया। जैसे मास्टर कई चीजों का ध्यान रहता है ना कि भाई मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान। ऐसे ही खिवैया का तो लक्ष्य यही रहेगा कि मुझे इनको पार कराना है। और साथ में क्या है, आज बाबा ने एक शब्द और बोला नया, कि ये शब्द तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। कौन सा शब्द खास? भले ब्राह्मणों की डिक्शनरी नहीं बोला, ये शब्द ज्ञान में है ही नहीं, क्षमा। देखो देखने में साधारण लगता है लेकिन बहुत कड़ा शब्द। क्षमा नहीं है इसका मतलब बाई चांस हम में कोई कमी कमजोरी है, कोई भूल हो गई तो हो गई बस, उसकी क्षमा मिल ही नहीं सकती। ब्राह्मणों में ज्ञान मार्ग में क्षमा शब्द है ही नहीं। क्या चीज है क्षमा का विकल्प क्या है दूसरा? बाबा ने कहा कि योग करते रहेंगे, ध्यान करेंगे तो पाप कर्म भस्म होंगे, तो उस विकर्म से जो भी पाप बना है आपका, जिसकी आप क्षमा मांगने की इच्छा रखते हो, और क्षमा तो होती नहीं यहाँ पर, तो इसलिए बाबा ने कहा योग करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। जिसकी इच्छा रखते हो कि ये विकर्म मेरा बन गया, तो वो विकर्म योग से विकर्म भस्म होते हैं कहते हैं ना, तो इसीलिए वो योग से विकर्म भस्म। तो आज की मुरली काफी हद तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर थी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे सामने एक ही आत्मा है जो संपूर्ण रीति से वैराग्य वृत्ति को धारण करके संपूर्ण बन गई। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। हमें उनके साथ रहने का 6-7 वर्ष मौका भी मिला। 1962 में ज्ञान में आए और 1969 में, 69 में तो बाबा अव्यक्ति हो गए। तो बहुत बार, अनेक बार, 10-12 बार बाबा से मिलने का मौका मिला। यहाँ पर मधुबन में तो मिले ही अनेक बार, दिल्ली में भी 2 बार मौका मिला, कानपुर में भी मिलने का मौका मिला। और जब मिलने का मौका मिला तो प्रैक्टिकल में समीप आने का भी बाबा के मौका मिला, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में जब किसका उदाहरण देखते हैं तो वो बात दिमाग में एकदम छप जाती है। किसी हीरो हीरोइन को फिल्म में एक्टिंग करते सुना होगा, भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता ही है, लेकिन अगर देख लेंगे कि वो उसकी ऐसी एक्टिंग है, ऐसा हाथ है, ऐसा पैर है, इस तरह डांस करते हैं आदि आदि, तो वो दिमाग में छप जाती है और वैसा फिर जो प्रयास करता है काफी हद तक उसके निकट तक अभ्यास कर सकता है। तो इस रीति से जब ये वैराग्य की बात आती है तो बाबा का तब से ही ज्ञान मार्ग में आना शुरू नहीं हुआ। 1936-37 से जब से बाबा ने ज्ञान लिया, बल्कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मानसिक भूमिका 3-4 वर्ष पहले से ही तैयार करनी शुरू कर दी थी। बाबा बहुत एक्सपर्ट थे बिजनेस में, हीरे जवाहरात का व्यवहार करते थे, व्यापार करते थे, और साथ ही साथ बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ बाबा का कनेक्शन था, वो सब हम सब ने सुनाई है, पढ़ाई है। लेकिन ये सब होते हुए भी ना बाबा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रवृत्ति बाबा की ऊपर बढ़ने लगी, उपराम होने लगे, एकांत प्रिय लगने लगा, और ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा। उनकी पत्नी ने बोला भी बल्कि 3-4 वर्ष पहले कि अब हमारे पास काफी धन हो गया है, अब हम सब वैराग्य लेकर के काशी चलते हैं या हरिद्वार, वहां पर बचा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। तब बाबा ने कहा था नहीं नहीं, अभी हमें और 2-3 साल कुछ कमा लेने दो और उसके बाद हम वैरागी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन साकार बाबा की वो पहलू जो व्यापार का पहलू था, कमर्शियल पहलू था, दुनियावी पहलू था, उस समय वो स्ट्रांग था, तब बाबा ने कहा ये। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी वैरागी प्रवृत्ति वो प्रबल होने लगी। और बाबा ने 1936-37 जब तक ये समय आया, बाबा बिल्कुल शिव बाबा के प्रवेशता के लिए तैयार हो गए, तो तब तक बाबा ने मानसिक रूप से ब्रह्मा बाबा को ईश्वर की प्रवेशता के लिए उनका तन मन तैयार कर दिया। बाबा की जीवन कहानी में ये काफी अच्छी रीति से जगदीश भाई ने लिखा भी हुआ है। तो पहले मानसिक रीति से हमारा, जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग में भी वो बच्चे आएंगे, कौन आएंगे, जिन्होंने भक्ति की हुई होगी, भले इस जन्म में कम की हो ना की हो, पहले की होगी, लेकिन टोटल भक्ति जिनकी ज्यादा होगी आदिकाल से, वो ही बच्चे मेरे ज्ञान में आएंगे। इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने वो तैयार किया। तो वैराग्य वृत्ति का मतलब यही मुख्य रीति से है कि वैराग्य माने सब कुछ छोड़ देना, ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ के हम चले जाएं और एकांतवासी हो जाएं, पहाड़ी पर चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, नहीं। इसका मतलब यही है, मानसिक रीति से हम दुनिया से अपने को डिटैच करते रहे। स्थूल रीति से तो हम अभी भी परिवार के साथ रहते हैं, दुनिया कहेगी कि भाई आप लोग सन्यासी थोड़ी हो, लेकिन बाबा कहता है तुम तो डबल सन्यासी हो, डबल वैरागी हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के विकारों से, कमजोरियों से परे। तो इसलिए बाबा ने जैसे अपने को ज्ञान मार्ग में आने से पहले से ही थोड़ा डिटैच करना शुरू कर दिया था, इस तरीके से
हम भी अब तो हम लोग तो ज्ञान मार्ग में आ ही गए, चल ही रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो हम ये देखते भी चलें कि हम मानसिक रीति से डिटैच होते चले जा रहे हैं। हुए हैं तभी तो यहां बैठे हैं, इतने समय से जब से ज्ञान में आए हैं, खान पान में शुद्धि आई है, वो दुनिया से डिटैच हो गए, रहन सहन में आए हैं, व्यवहार में आए हैं, भाई बाहर की दुनिया, बाहर का खान पान, बाहर का सिनेमा देखना, कई चीजें छोड़ दी हैं, तो वो तो वैराग्य आया ही आया है। अब आवश्यकता है सूक्ष्म वैराग्य, और वो बाबा कहता है वो सूक्ष्म वैराग्य कैसा हो, अंत समय जब आए तो वो वैराग्य हमें यहां खींचे नहीं। जैसे बाबा कहता है ना, अंतमति सोगति का गया, तो हमारा सारा पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हमारी अंतमति होगी, जब हमारे प्राण इस शरीर से निकलेंगे, उस एक क्षण के लिए हमारा ये सारा पुरुषार्थ हो रहा है अंतमति। तो कोई भी चीज होती है ना, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कोई भी चीज है, प्रैक्टिस करने से परफेक्टनेस आती है। आप सब माताओं को भी अनुभव है भाई, जब घर में आपको, जब छोटे होंगे, कन्या होंगे, तो आपको सिखाया गया होगा रोटी बेलो, तो शुरू शुरू में पहली बार में ही तो गोल नहीं बन जाती, इधर उधर चिपक भी गई होगी चकले पर, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नक्शा जैसा बना होगा। लेकिन जितना जितना आप अभ्यास करते चले ना, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी बनाएंगे भी अगर तो बात भी करते रहेंगे, उधर देखेंगे भी नहीं, अपने आप ही वो रोटी घूमती रहेगी, गोल गोल बन जाएगी, चिपकेगी भी नहीं। अभ्यास ऐसे ही आप भाइयों को भी, सबको अभ्यास होगा भाई, बचपन में जब साइकिल चलाने की शिक्षा ली तो बैलेंस नहीं बना, दो चार बार बैलेंस बिगड़ा होगा, गिरे भी होंगे, और वो लेकिन छोड़ा नहीं उस कार्य को, करते रहे करते रहे, तो फिर बैलेंस भी हो गया, स्कूटर पर भी बैलेंस बनाना आ गया। और इस रीति से आज ये भी है कि सोच रहे हैं कुछ भी घर, हाँ, ऑफिस से घर जाने का ये वो भी नहीं है, लेकिन अपने आप ही घर की तरफ स्कूटर का मुड़ जाएगा, अपने आप ही एब्सेंट माइंडेडली भी वहां पर आप चले जाएंगे। तो इसी तरह यहां पर भी ना, बाबा तो एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड बोलता है, बस 8 घंटे याद की यात्रा। अब 8 घंटे तक तो कैसे होगी याद की यात्रा, क्योंकि बाबा कहता है 8 घंटे आराम भी करो, 8 घंटे कार्य व्यवहार भी करो, और 8 घंटे इस तरह याद की यात्रा, नींद भी करो। तो भाव क्या है, हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड को देख के एकदम नर्वस ना हो, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड माइंड में रहता है तो आज नहीं तो कल 8 घंटा बुद्धि में याद होगी ना, तो जब हमारी याद की यात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, 3 घंटा 4 घंटा और बढ़ते बढ़ते होगी, लेकिन बुद्धि में 8 घंटा याद रहेगा तो बढ़ती रहेगी लगातार। तो इसीलिए बुद्धि में हम हमेशा जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जो ऊंच से ऊंच पद है, जो बाबा ने कहा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना, उस तक वो करते रहे। और वो कब होगी, वैराग्य वृत्ति, हाँ? तो उसके लिए बाबा ने धीरे धीरे सूक्ष्म बातें भी और बताई है। स्थूल बातों में तो हम ज्यादातर कर चुके हैं, तभी तो यहां बैठे हैं, सब रहन सहन खान पान वो सब हो गया है, काफी शुद्धि आ गई है। तो एक तो बाबा कहता है मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दो, बस। विदेशी इस बात में बहुत पक्के हैं, जानकी दादी ने उन्हें बहुत बस वो नहीं कहते, यहाँ पर तो आते हैं हम ही मधुबन में लगभग 30 वर्ष से यहाँ पर रहते हैं और हमने देखा है यहाँ पर आते थे या जहाँ पहले अहमदाबाद में भी थे रहते थे तो आते थे चलो बाबा के घर चलते हैं, ले चलेंगे अपने घर हा? अगर विदेशी जाओ बाबा आप तो कह रहे थे हम तो समझे थे सेंटर पर चलेंगे, हाँ सेंटर तो है ही है बाबा का, वहाँ बहनें रहती हैं, ये हमारा ये भी बाबा का घर है, निमित्त हम रहते हैं, चलो बाबा की कार में बैठते हैं। बाबा की कार माने उनकी अपनी होगी, जैसे बाबा मम्मा दादी जी भी हमेशा दादी बोलती थी, दादी ने भी कभी मैं नहीं बोला, भाई दादी कहती है ऐसा करो, बस मम्मा बाबा सबने बाबा का ये है कहना, तो उस रीति से मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, बस मेरा कुछ भी नहीं रहा, जो बाबा कहता है जब मैं की बात आए तो क्या समझो मैं आत्मा, ऐसा बाबा ने बोला है ना मैं आत्मा, और इसी रीति से जब भी ये हो मेरा अगर आए तो क्या समझो मेरा बाबा, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करने का मतलब बाबा, इसीलिए पहले तो स्थूल रीति से ये परिवर्तन आए, कोशिश ये रहे चलो आओ अब बस घर चलते हैं यानी बाबा के घर, जैसे विदेशियों में ये काफी पक्का संस्कार हो गया इसीलिए हम काफी लास्ट सो फास्ट भी जाते हैं, इसी तरह हम बच्चों को भी ये हो रहे हैं। और क्या रहना चाहिए जीवन के अंदर, क्योंकि अंत समय में ना जो भी हमारा टारगेट होता है वो लक्ष्य वो बार बार बुद्धि में आना चाहिए, लक्ष्य विमुख नहीं हो जाना चाहिए, तो हमारा लक्ष्य क्या है यही नरसे नारायण जैसे बोलते हैं ना नारी से लक्ष्मी, तो वो लक्ष्य की क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने लक्ष्य दे दिया, साक्षात्कार कराया, ऊपर से स्टार आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है कोई राजकुमारी बन रहे हैं, बड़ी अच्छी नई दुनिया है सब रास कर रहे हैं, तो बाबा भी देखने में मस्त हो गए, वाह बहुत अच्छी दुनिया है, खुश हो गए बाबा, लेकिन फिर जब बाबा के कानों में आवाज सुनाई दी, क्या आवाज, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तो फिर बाबा का एकदम बुद्धि चली, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा मुझे तो मालूम ही नहीं आता ही नहीं, तो बाबा वो, लेकिन तब से बाबा के माइंड में ये हो गया बुद्धि में मुझे ये दुनिया बनानी है, और साथ ही साथ जब बाबा को नारायण का साक्षात्कार हुआ और नारायण के मुंह से क्या आवाज सुनी बाबा ने, अहम चतुर्भुज तत्व, मैं भी चतुर्भुज हूं तुम भी मेरे ही स्वरूप, तो अहम चतुर्भुज तत्वम उस समय भी बाबा को क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में यही कि मैं चतुर्भुज और तुम मेरे ही स्वरूप हो, जैसे जैसे ज्ञान क्लियर होता गया तो बाबा को होता गया कि मैं ही नारायण की आत्मा हूं, मैं ही श्री कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे ही ये बनना है, तो तब से बाबा को ना ये क्लियर हो गया, और समय प्रति समय जब ब्राह्मणी वतन में जाती थी तो कई बार बाबा ऐसे पूछवाते भी थे उससे कि तुम सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा देखती हो देख के आना गौर से कि उस ब्रह्मा में और इस साकारी ब्रह्मा में क्या अंतर है, सुना है ना आपने, तो कंपेयर जब तक नहीं करेंगे हम अपने लक्ष्य से तब तक हमें डिफरेंस का पता कैसे चलेगा, विद्यार्थी भी जब इंजीनियरिंग पढ़ने डॉक्टरी पढ़ने जाता है और उसे मालूम है इतने साल बाद मेरा 4 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है, उसके माइंड में ये क्लैरिटी आती है तो फिर वो गिनता है, फर्स्ट ईयर पास हुआ, अब सेकंड में आया, अब 3 साल रह गए, अब 2 साल रह गए, अब 1 साल रह गया, ऐसे अब ये मेरा फाइनल ईयर है, अब मैं बनने वाला हूं। तो इसी तरह हमारी बुद्धि में भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन पहले अपना फाइनल स्वरूप तो मालूम होना कि कौन सा है। उसमें ब्रह्मा बाबा को तो ये था, सूक्ष्म वतन से पूछवा लेते थे संदेशी से, हम और आप क्या करेंगे। तो लेकिन हम और आपके लिए भी और उतना ही इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे अपने अंदर जो है ना, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है अंदर ही। और जैसे ही अपने अंदर संपूर्ण स्वरूप है, हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। भाव के अंदर जाने का, एक व्यक्ति था बड़ा, मतलब एक दिन थोड़ा अशांत जैसा था, वो गुरु के पास गया, गुरु सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते हुए सब सुन रहे थे चेले, वो भी सामने बैठ गया, वो भी सुनने लगा सबका। तो गुरुजी सुना रहे थे, सब चेले सुन रहे थे, इतनी देर में बाहर भूकंप आया, अर्थक्वेक, हलचल हुई पृथ्वी में, सब हिलने लगा, कुछ बिल्डिंगें गिरने लगी। तो सब चेले उठ के भागे बाहर, और बाहर भागते भागते कहा, गुरुजी आप भी आओ आओ, बाहर आओ बाहर आओ, भागो। तो सब वो बाहर गए, गुरुजी तो अपनी जगह बैठे ही रहे, तो बैठे रहे, वो बाहर भागे सब, तो गुरुजी हिले नहीं। चेलों ने बहुत बोला लेकिन गुरुजी बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब भूकंप शांत हो गया तो सब वापस लौट के आए, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको भय नहीं लगा, ये अगर गिर जाता ऊपर से जहाँ पर आप बैठे थे, हम लोग तो भाग के चले गए, तो आपको चोट लगती, बहुत नुकसान हो जाता, सुना होगा आपने। हाँ, तो गुरुजी ने क्या बोला? मतलब गुरुजी ने हम लोगों की बात जो प्रैक्टिकल थी, वो थ्योरेटिकल यानी भक्ति मार्ग में भी ये एग्जिस्ट करता है। गुरुजी ने बोला, भाई तुमने देखा नहीं, मैं भी भागा था, लेकिन तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। तो अंदर भागा का मतलब, अंदर वही भाग सकता है। कोई भी काम आदमी पहली बार करेगा तो एकदम परफेक्ट तो नहीं कर सकता। जिसे अंदर भागने का बार बार अभ्यास होगा, वो ही अंदर भाग सकता है। तो अभी आप लोगों को भी ना बीच बीच में अंदर, क्योंकि अंत समय बाबा ने बताया, भारत में तो भूचाल आएगा, पानी का फ्लड आएंगे, आजकल टीवी में भी देख रहे होंगे, कितने शहरों में कितने प्रांतों में पानी इतना आ रहा है, बाढ़ में लोग बह रहे हैं, बादल फट रहे हैं कहीं, और बादल फट के, आप लोग तो कुछ नवरंगपुरा से आए, वहां से ही आए हैं ना ज्यादातर, तो नदी के किनारे, तो वहां पर तो साइक्लोन जब आता है तो साइक्लोन में कितनी तेज हवाएं चलती हैं, कितनी तेज पानी भी, नदी भी अपना बांध तोड़ देती है, आदि आदि। तो भागने का अभ्यास अंदर, जैसे बाहर भागने का अभ्यास है ना, ये आया, गवर्नमेंट भी बाहर ट्रकें गाड़ियां कर देगी, बाहर भागो, दूसरी जगह भागो, ऊंची जगह भागो, ऐसे हमें अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। जितना जितना अंदर भागने का, उसकी प्रैक्टिस करो। जब भी कोई हलचल हो, बाहर भले भागो, लेकिन तब ये देखो, अंदर भागने का मेरा अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर प्रकृति के बीच में मैं आत्मा, और देखो अंदर मेरी संपूर्ण मूर्ति है। अपना शकल तो शीशे में बचपन से देखते ही आ रहे हैं, अपने शकल का तो मालूम हर एक को होता ही है। अंदर ये महसूस करो, अंदर मेरी संपूर्ण मूर्ति है, और बहुत तेज प्रकाशित मूर्ति है, संदेशियां भी जब जाती थी और ब्रह्मा बाबा को आके बताती थी कि बाबा आप में और उनमें यही अंतर है, शकल सूरत सब कुछ वैसी है लेकिन उसमें तेज बहुत है, लाइट बहुत है, आप में उतनी लाइट नहीं है, बस वही अंतर हम में और हमारी संपूर्ण मूर्ति में भी है। हमारी संपूर्ण मूर्ति में वो बाबा को तो फिर भी संदेशी पर डिपेंड रहना पड़ता था और वो जाए जब, हम तो कभी भी अपनी संपूर्ण मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। जितना जितना अंदर जाएंगे विजुअलाइज करो कि मेरी, जैसे शीशे में देखते हैं ना, शीशे में दिन में कम से कम एक दो बार तो देखते ही हैं, तो इसीलिए बचपन से वो अभ्यास हो गया है तो वो मूर्ति हमारे अंदर है और उसे तेजोमय रीति से देखने का अभ्यास करें। एक ये हमें वो करते चलना है, उससे क्या है कि हमारा वर्तमान में ये जो है ना, इससे वैराग्य वृत्ति का जैसे अनुभव होता जाएगा, धीरे धीरे वैराग्य आएगा। वैराग्य का मतलब कोई इसे छोड़ नहीं देना है, ये तो अंत तक साथ में रहेगा, लेकिन अंत मति सो गति का जो गायन है ना, तो अंत में गति कैसे होगी, क्योंकि कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंत समय उसे कौन याद आता है, कौन याद आता है, भगवान याद आता है, वही तो याद नहीं आता। सब याद दिलाते हैं भगवान को, याद करो, लेकिन याद उसे, या दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, या तो जिससे बहुत अटैचमेंट हो, मोह हो, बच्चे हो, पोते हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे, वो याद जिससे बहुत मोह होगा, या जिससे कुछ वैर भाव होगा, दुश्मनी होगी। तो इसीलिए कई बार हम लोग सुनते हैं भाई वो मरते मरते अपने बच्चों को कह गया कि भाई उससे बदला लेना बाकी था, उसने ये नुकसान किया था, तुम्हें उससे बदला लेना है। इस तरह पुश्तों तक वो चला आता है कई बार, ऐसा सुनते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये बड़ी ऊंची चीज है, गौर से सुनना, जो बाबा हम बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं बहुत समय से। अभी बाबा ये अभ्यास न किसी से वैर भाव हो, न किसी से प्रेम भाव, सबसे बराबर हो। जैसे कबीर दास जी भी बोल गए ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से दोस्ती हो, इतने प्रेम हो, ऐसी मित्रता हो कि उसको कोई बात अंदर का राज है या कोई भी बात बताए बिना न रह सके। कभी भी कोई नई बात पता चलती है एकदम, अरे उसको बतानी है, जिससे प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसको ये बतानी है, उसको बताए बिना रह नहीं सकते। तो इसीलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से, यही बाबा ने अभी हम बच्चों को बताया है। अब आपका सबसे समान भाव, पहले था कि सबसे प्रेम भाव हो, प्रेम रखो, दुश्मनी नहीं रखो, लेकिन प्रेम भी अंत में संपूर्ण नहीं बनने देगा, क्योंकि जिससे अति प्रेम होगा ना, उसी तरफ खिंचाव होगा और वो ही अंत में याद आएगा, उसकी स्मृति में ही शरीर छूटा तो उसके ही परिवार में, उसके ही निकट में, वहीं जाकर ही हमारा जन्म हो जाएगा, उससे हिसाब किताब जुड़ जाएगा। तो अंत में किसी से न प्रेम भाव होगा, न दुश्मनी भाव होगा, तब बाबा की याद रह सकेगी। तो इसीलिए प्रेम भाव और दुश्मनी भाव दोनों ही न हो किसी से अंत समय के। तो ये है वैराग्य वृत्ति का एक और क्लोज लक्षण, ये हमें अपने अंदर देखते चलना है। और क्या है, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, व्यर्थ, हाँ, बाबा ने भी एक बार सर्टिफिकेट दिया था मैं बच्चों को, हाँ हम लोगों की 20 साल पहले 25 साल पहले सीनियर भाई बहनों की भट्टी हुई थी, जो कि जिन्होंने काफी साकार बाबा के निकट रहे हैं या पालना ली है, या जिन्हें ज्ञान में 40-50 साल हो गए, उन लोगों की भट्टी हुई थी। तो तब गुलजार दादी संदेश लाए थे, तब तो बहुत अच्छी हेल्थ में थे, कि बाबा ने कहा है इन बच्चों को, हाँ मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूं, कौन सा, कि इनमें विकारी संकल्प नहीं है, विकार की भावनाएं नहीं है, विकार के संकल्प काम आदि के, विशेष करके ब्रह्मचर्य व्रत में ये 100% सब पास है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ अब ब्रह्माचारी बनना है। और ब्रह्माचारी बनने का मतलब ये है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, विकारी संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बच्चों के चलते हैं। ये क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं करना चाहिए, और वो हमारे अपने परिवार के ही लोगों के बीच में चलते हैं। परिवार माने दैवी परिवार, ये परिवार ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार वाला कोई या दुनिया वाला कोई गुस्सा करेगा, कोई बात करेगा, हम लोग बहुत शांत रहेंगे, उसके विपरीत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये शो करना है कि यहाँ पर आके हमारे, हमने विकारों को जीता है। लेकिन अगर हमारा ब्राह्मण परिवार वाला ही ना कोई अगर कुछ करता है तो हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प रही, ये 35-40 साल पुराना, 50 साल पुराना भाई या बहन, इसमें भी अभी तक क्रोध, इसमें भी अभी तक लोभ मोह की भावना, इसमें अभी तक ईर्ष्या भाव, इसमें अहंकार का भाव, कोई भी ये संकल्प अगर होता है ना, ये व्यर्थ संकल्प भी बाबा अभी हम बच्चों को खत्म करना चाहता है। एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाता था पत्थर को तराश करके, तो सब लोग बहुत तारीफ करते थे, बड़ी इतनी सारी मूर्तियां बनाई हैं, बहुत अच्छी बनाई हैं, आप कैसे इतनी बढ़िया मूर्ति बना लेते हो। कहते नहीं मैं मूर्ति बनाता ही नहीं। कैसे नहीं, ये सब आपने ही तो बनाई है। कि नहीं नहीं जब मुझे मूर्ति बनाने की बात कोई होती है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं बाहर से उसका जितना भी व्यर्थ है, एक्स्ट्रा है, वो निकाल देता हूं, तो मूर्ति अंदर से अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। क्योंकि बाहर जितना भी एक्स्ट्रा वो है वो निकल जाएगा तो मूर्ति। इसी तरह हमें भी ना, अब यही हमारे अंदर भी हमारी संपूर्ण मूर्ति व्याप्त है, और जो बाबा कहता है अंत समय लोग आएंगे और आपके संपूर्णता के दर्शन करेंगे, आपके नैनों में देखेंगे, बस इनके नैन तो सबसे अलग हैं, विचित्र हैं, जैसा बाबा ने अभी भी मुरली में बोला, और बस ये तो सबसे अलग न्यारे ही दिखते हैं। तो वो कब होगा न्यारे दिखने का, जब उन्हें हमारे संपूर्ण मूर्ति के दर्शन होंगे, और संपूर्ण मूर्ति के तब दर्शन होंगे जब ये जितना भी व्यर्थ है, क्यों क्या कैसे हमारे अंदर जितना भी ये सब है, ये सब नहीं होगा। अब ब्रह्मा बाबा में यही था, कोई भी जाता था पहली बार से भी तो बस हम लोग जाते थे, बस पहली बार भी वही, बस आओ बच्चे, आओ 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 मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा ऐसे बाहें करके, बस थोड़ा बाबा ने करा और हम बस न चाहते हुए भी चुंबक की तरह खिंचे हुए एकदम चले आए। पहली बारी तो ब्रह्मा बाबा को देखा हुआ होता था उस समय जब आते थे, कोई कुमारी हो, माता हो, कोई भाई हो, वृद्ध हो, बस बाबा ने करा अब वो सब भाव भूल करके मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या कुछ बाबा की भाव में, क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसा अभ्यास किया हुआ था जो हम सब ने सुना है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है, सब बच्चे बेटी बेटियों के लिए और पत्नी के लिए ये आत्मा है, और फिर सारे पड़ोसियों के लिए आसपास, तो आत्मा पक्का किया हुआ था। तो जैसे ही बाबा ये करता था तो आत्मिक आत्मा से इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकली थी, आत्मिक वृत्ति बाबा की इतनी स्ट्रांग थी कि दूसरा न चाहते भी ना शरीर को भूल करके तुरंत बाबा की भाव में आ जाता था, आत्मिक भाव। तो मेरा जितना आत्मिक भाव होगा दूसरे का भी उतना ही होगा। तो इसी कारण से अब हमें यही देखते, ये कितना इजी है चेक करना, नहीं तो चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। यही चेक करना, बस मैं अपने आत्मिक भाव में स्थित होके अपने ही दैवी परिवार में लौकिक में कहीं भी ये अभ्यास करूं, बस आत्मिक रूप से देखूं, भले इस रीति से ना करें क्योंकि हम लोग उतने ज्यादा तो अभ्यासी नहीं है जितने ब्रह्मा बाबा थे, लेकिन इस रीति से ही नैनों से अपने व्यवहार से बोल से ऐसा करें कि वो आत्मा अगर खींच के चले आए तो ये समझना चाहिए कि हाँ मैं भी धीरे धीरे सतो प्रधान स्टेज की तरफ जा रही हूँ। बाबा कहता है हाँ अभी तमो प्रधान थे, तमो प्रधान से तो बच्चे निकल गए, तमो तक भी आ गए, तमो से ऊपर रजो, रजो में भी अभी मेरे बच्चे हैं, रजो प्रधान स्टेज तक, भले सतो प्रधान तक नहीं पहुंचे लेकिन रजो रजो प्रधान स्टेज तक तो आ गए हैं। तो इस कारण से दुनिया की भेंट में हम काफी ऊंचे आ गए हैं, अब हमें उसको टाइम टू टाइम अपना नैनों से व्यवहार से ये टेस्ट भी करना है। बस नैन हमारे ऐसे हो, इतने वात्सल्य भरे हो, प्रेम भाव, नैन है ना, नैन से ही तो प्रकट होता है। क्रोध कोई करेगा कैसे उसके नैन लाल लाल हो जाएंगे, क्रोध भी प्रत्यक्ष होता है, प्रेम भाव भी जिसके प्रति होता है स्नेह भाव, वो भी नैनों से ही प्रकट होता है, वाणी से प्रकट होता है। तो इन सब चीजों से हमें धीरे धीरे ये भी टेस्ट करना है, इसीलिए बाबा कहता है कि अभी सब जो भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को ऐसे देहत की वैराग्य वृत्ति, और इससे और क्या होगा वो मैं आपको मैंने बताया ना। तो मैं अब बाबा के आखिरी दिनों में 18 जनवरी की तरफ आता हूँ, ये भी खास गौर से सुनना क्योंकि हम सबको भी संपूर्ण और कर्मातीत तो बनना ही है जो बाबा ब्रह्मा बाबा बना। तो पहले बाबा से हम सब जब लोग मिलते थे तो बाबा को पास जाते थे और बाबा को बताते थे कोई बात, कोई प्रश्न पूछते थे, बाबा उसका समाधान देते थे, उत्तर देते थे। लेकिन बाबा धीरे 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 अपने को डिटैच करते करते इतनी वैराग्य वृत्ति बाबा में डेवलप हो गई थी, उसका प्रमाण क्या, बस हम 17 और 18 जनवरी को बाबा से लगभग 6 बार मिले, 17 जनवरी और 18 जनवरी को बाबा के सम्मुख जाते थे हमेशा की तरह कि बाबा से ये पूछेंगे ये। तब तो बहुत कम बच्चे होते थे और हम भी बहुत यंग थे, 18 20 22 साल के, तो उस समय जब बाद में जब 21 साल में हमने इंजीनियरिंग पास किया तो ये उस समय की बात है, 18 जनवरी 1969, उस वक्त जब बाबा के सामने गए बाबा से ये पूछेंगे, तो बाबा ने जरा दृष्टि दी और दृष्टि देकर बाबा ने कहा कि बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। हमेशा तो होता था कि हम कहते थे हम ये पूछने आए हैं, लेकिन 17-18 जनवरी को जितनी बार हम 6 बार मिले, हर बार बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने जो हमारे मन में चल रहा था, कभी हमारे पुरुषार्थ की बात, कभी हमारी पोस्टिंग की बात, कभी हमारे बाहर भोजन की बात, कई प्रकार की बातें, लेकिन हर बार बाबा मन की बात को पढ़ लिया नैनों के द्वारा। तो ये एक लक्षण है, जितनी हमारे में वैराग्य वृत्ति होगी, बाहर का डिटैच होगा, उतना हम हर व्यक्ति के भाव को पढ़ सकेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस दिन हमारा कोई भी काम जो है ना पेंडिंग नहीं है। ऐसा कहते हैं अंत में बात वो ही याद आती है, अंतमते सो गति, कौन सी बात, जो काम हमारा रहा हुआ होता है, हमारे मन में होता है ये हमें करना है लेकिन कर नहीं सके, उससे पहले ही हमारा अंतिम क्षण आ गया, तो उसको लेकर के जब हम शरीर छोड़ते हैं ना कि ये काम करना बाकी रह गया, तो वो बात हमारे साथ जाती है। इसीलिए कोई काम हमारा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बचा हुआ कि अरे मुझे ये दान करना था, सेंटर में मकान बन रहा है उसमें ये हिस्सा लगाना था, बच्ची को ज्ञान में चलाने के लिए शादी करनी नहीं करनी थी, फिर भी हमने लोक लाज की वजह से उसका विवाह कर लिया, तो ये मन के अंदर हमारे अंदर पेंडिंग कोई नहीं रहना चाहिए, युद्ध भी नहीं रहनी चाहिए करूं या ना करूं, नहीं मैं वो करूं जो ज्ञान हमें देता है। बाबा के सामने भी तो ये आया, बाबा के सामने उनके लौकिक पुत्र पुत्रियां सब थी, बाबा अभी भी बोलता है पुत्रियां अगर ज्ञान में नहीं चलती हैं तो विवाह करो, बेटा अगर नहीं चलता है तो उसे बरसक प्रयत्न करो ज्ञान में चलाने का, अगर नहीं चलता है तो उसमें तुम्हें धन लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हें ये नहीं करना है कि भाई मुझे इसकी शादी करानी है, नहीं। तो इस रीति से बाबा ने कहा हमारे सामने भी ये सब परिस्थितियां गृहस्थी वाले जो हैं आएंगे उनके सामने बाबा लिविंग एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ये है, कोई भी काम पेंडिंग न रहे, रहा हुआ न रहे। तीसरी बात, हमें ये देखना है कि जो कोई भी बात अगर होती है ना, तो मेरे अंतिम पेपर हमारा जो है ये शरीर का पेपर है, ये हमारा सबसे निकट का साथी है, मन भी अलग, तन मन जो है, धन संबंध जितनी चीजें हैं फिर भी अलग हैं, संबंध भी शरीर से संबंध, लेकिन तन तो मेरे साथ 24 घंटा ही रहता है ना, तो तन का पेपर बाबा के सामने भी आया, मामा के सामने भी और सब के सामने, तो ये तन का पेपर हमें खास अंतिम समय हमारे सामने आएगा। बाबा का भी हमने देखा, अंतिम दिन बाबा ने बोला आज बच्चों को सुबह क्लास नहीं, 18 जनवरी की सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, क्लास में आए थे बाबा, बस पूरे टाइम दृष्टि दी और दृष्टि देके अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कहके बाबा चले गए, लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को रात्रि क्लास जल्दी कराएगा, सब बच्चे लगभग 7:30-8 तक आ जाए जिससे, और सब भोजन करके आए, ये विशेष इंस्ट्रक्शन थी, क्यों, क्योंकि कई सोचते आज जल्दी क्लास है चलो बाद में भोजन कर लेंगे जाके, भोजन करने की आदत लेट होती है, लेकिन नहीं जल्दी, क्यों, क्योंकि फिर बाद में तो कोई भोजन, बाबा को तो मालूम था कि आज बस क्लास के बाद मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, अंतमति सोगति का, बाबा को ये भी मालूम था और ये भी मालूम था कि ये शरीर भीष्म पितामह की तरह, जैसे भीष्म पितामह को मालूम था कि मैं इच्छा मृत्यु का उसे वरदान था, ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी ये मालूम आभास पूरा हो गया था, आज मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। तभी तो बाबा ने कहा ईशु दादी को, आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बचा हुआ काम नहीं, ये जितने भी बचे हुए काम थे, नक्की लेक पर जो बिल्डिंग है वो किराए पर पहले थी, प्रदर्शनी करी थी, कई सबका विचार था ये बिल्डिंग ले लेनी चाहिए, रखा हुआ था, हमारे पास साधन उतने नहीं थे तब उस समय, लेकिन लास्ट डे बाबा ने कहा नहीं इसे ले लो, इससे बहुत सेवा होगी, उस पर भी साइन करें। तो कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहे, बचा हुआ ना रहे, ये बाकी है नहीं, तो वो अंत समय बुद्धि में रहेगा और उसके मुताबिक हमारा यहीं पर ही जन्म हो जाएगा। इस रेफरेंस में मैं एक बात बताना चाहता हूं मम्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। 24 जून का दिन था ना मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो मम्मा ने जैसे सबको मालूम है अंगूर दिए, और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, और मम्मा शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन पहुंची, तो सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा वहां पर थे, साकार में तो बाबा यहीं थे, बाबा तो 69 तक हमारे साथ रहे, लेकिन 64 में जब मामा ने शरीर छोड़ा पहुंचे, तो वहां पर साकार जो अव्यक्त बाप दादा थे, उन्होंने पूछा शिव बाबा और संपूर्ण ब्रह्मा कि बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो, मामा से पूछा, तो मामा ने देखा और मामा ने कहा नहीं बाबा मैंने तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा अरे नहीं किया बच्ची, जाओ अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, और वहां पर साकार ब्रह्मा बाबा और सभी बच्चे योग कर रहे हैं, तो तुम जाओ शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मम्मा को बाबा ने भेजा आत्मा को, और मम्मा नीचे आई, काफी समय तक नीचे रही मम्मा, उसके बाद फिर मम्मा जब ऊपर गई तो बाबा ने कहा पूछा बच्ची करके आए हैं अनुभव, कि नहीं बाबा मैं तो नहीं किया अनुभव। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा था जाओ अनुभव करके आओ, कि बाबा जब मैं नीचे गई शरीर तो था पड़ा हुआ, मैंने बहुत प्रयत्न किया कि शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी, क्योंकि शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया था, और बहुत प्रयास के बावजूद भी उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई और ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं हुआ, इसीलिए मैं तो वापस आ गई। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, जब तक कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया है तब तक तुम वापस परमधाम अपनी सीट पर नहीं जा सकती। तुम क्या, कोई भी बच्चा अपनी सीट पर परमधाम वापस नहीं जा सकता। तो इसीलिए सब बच्चों को बताना कि वहां पर जाने के लिए पहले यहां पर अपने सारे कर्म भोग चुकतू करने हैं, और उसके बाद ही तुम वहां पर जा सकोगे। तो अभी चूंकि तुमने कर्म भोग चुकतू नहीं किए हैं, मम्मा को बोला तो जाओ तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा, माता पिता जो है बस तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं गर्भ में, और जाओ नया जन्म लेके फिर से पुरुषार्थ करो, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, और बिल्कुल उसी स्टेज पर जब तुम पहुंच जाओगी जिस स्टेज पर तुमने परमधाम अपनी सीट छोड़ी थी, मतलब पवित्रता की वो हाईएस्ट स्टेज, उस जिस स्थिति में शरीर छोड़ा था, जब बिल्कुल वैसा ही तुम स्थिति को प्राप्त कर लोगी तो तुम वहां पर जाओगी और इसी तरीके से सभी बच्चों को अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था, सबकी कर्मातीत अवस्था अपनी अपनी है, जिसकी कर्मातीत अवस्था हाईएस्ट है सतयुग के लायक वो सतयुग में जन्म लेगा, जिसकी कर्मातीत स्थिति त्रेता युग के लायक है उसकी हाईएस्ट स्टेज हाईएस्ट पद त्रेता युग में है वो वैसा पद लेगा। तो उस हरेक की अपनी अपनी कर्मातीत स्टेज है, सबको अपना जन्म लेना है तो तुम जाओ अभी। तो देखो मम्मा को भी गए हुए करीब 60 वर्ष तो हो गया, अभी तक मम्मा जैसे पुरुषार्थ कर रही है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने का। तो भाव ये है कि हम बच्चों को भी कभी भी अपनी वर्तमान स्टेज से वो नहीं होना चाहिए, कंटालना नहीं चाहिए, मेरे पास धन का अभाव है, मेरा तन बीमार है, मैं बहुत सेवा नहीं कर सकती, अगर मैं भी कुमारी होती बहुत माताओं की तरह ना, कई माताओं को संकल्प आता है कि हमारी भी शादी नहीं हुई होती तो हम भी समर्पित हो गए होते, ये कर लेते। तो बाबा बताते हैं, कहते हैं कि कोई ये ही जो शरीर तुम्हें मिला है बेस्ट जो संगम युग में मिल सकता था वो शरीर तुम बच्चों को मिला है, इसमें ही तुम मैक्सिमम सबसे बड़े से बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें जितना भी कभी भी ये नहीं आना चाहिए मैं ये शरीर छूटे तो मैं नया जन्म लूं, चलो नए जन्म में नया शरीर होगा मैं ज्यादा पुरुषार्थ कर सकूंगा या कर सकूंगी, नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी तभी बाबा ने मुझे अंतिम जन्म में ये शरीर दिया है। तो इसीलिए वो पुरुषार्थ, तो उससे क्या होगा, हमारा ध्यान धीरे धीरे ना उस दुनिया की सभी बातों से बुद्धि निकलती जाएगी और जो जैसा विषय है वैसा ही हम एकदम न्यारे और प्यारे होते जाएंगे और जितना न्यारे प्यारे होते जाएंगे उतनी हमारी स्थिति भी आज के विषय अनुसार होती जाएगी। अब हमें बस इस तरीके से चलना है और ब्यूटी यही है, अगर शरीर तो सबको छोड़ना है, ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, तो बाबा के लास्ट डे की बात बता रहे थे हम, बाबा को वैसे खांसी आती थी कई बार, और कई बार खांसी आती थी तो मुरली चलाते चलाते खांसते खांसते बाबा की आंखें भी जैसे गीली हो जाती थी, हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा तो बस इशारा करके देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, नए तत्वों से नया शरीर मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रदान होगी, आत्मा सतो प्रदान और शरीर सतो प्रदान तो कितनी अच्छी नई दुनिया होगी, सब प्रकार के सुख होंगे। और बाबा बस थोड़ी देर में जहाँ इतनी तेज खांसी आ रही होती थी उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके अपनी स्वस्थिति के आधार पर कि मैं जाके फिर से ऐसा कृष्ण बनूंगा, स्वस्थिति को महान बना के बाबा उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था, फिर से बाबा मुरली चलाने लगता था और बिना किसी खांसी के। और अंतिम दिन की मुरली की यही विशेषता थी 18 जनवरी की रात्रि क्लास की, बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें एक बार भी बाबा को न तो खांसी आई न गला साफ करने की ऐसे कफ कर साफ करने की कोशिश बाबा को महसूस हुई, बिल्कुल कर्मातीत अवस्था और शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। ये कर्मातीत स्थिति का अनुभव है और हरेक को ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है, इसलिए शरीर के कर्म भोग बीमारी है कोई भी है हम कभी भी कंटाले नहीं, परेशान ना हो, कभी भी ये ना कहे ये बीमारी क्यों मुझे ही आनी थी, क्या क्यों आई, कब छूटेगी, नहीं। जितनी जैसे ये छूटेगी उसके बाद बाबा की तरह हम भी शरीर छोड़ देंगे और बस बाबा सबसे छुट्टी लेके यही हिस्ट्री हॉल में इस वाले दरवाजे से बाबा निकले बाहर, और बस बाबा घर निकलने का तरीका भी ऐसे बस उल्टा ही चलते चलते उल्टे पैर से बाबा दरवाजे तक आते थे। बच्चों को मैं, बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे, इनको मैं पीठ कैसे दिखाऊं, कितनी ऊंची भावना बाबा की, इसीलिए बाबा उनकी तरफ ही मुंह करते करते आते थे और निकल जाता था। बाबा ने विदा ली और इसके बाद विदा लेके बाबा के कमरे में गए, दादी जी के, दादी जी भी साथ में थे, दादी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदाई ली। तो ये कर्मातीत हमें भी इसी तरह ही शरीर छोड़ना है। कर्मातीत स्थिति को पाते हुए शरीर का कोई रोग नहीं, बंधन नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बाबा की तरह यानी इच्छा मिटते हो। तो ये संकल्प रखो कि बाबा मुझे भी आपकी तरह इच्छा मृत्यु को प्राप्त होना है। मानो ये छत गिरी, अगर हम आप भी इसमें मर गए और दुनिया वाले भी ऐसे ही मरते हैं तो हम में और दुनिया वालों में फर्क ही क्या रहा। हम सब अपनी इच्छा से शरीर छोड़े कि हाँ बाबा अब मेरा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अब मैं आपके पास आया कि आया या आई कि आई, ये स्थिति होनी चाहिए। और जरूर होगी, बाबा को जब कर्मातीत बना के ले जाना है तो इसी स्थिति में हमें अंत में जाना है, और जरूर जाएंगे, लेकिन संकल्प में हमारे दृढ़ता हो। मैं कैसे होंगे, बाबा तो बाबा ही था, हम तो गृहस्थी वाले हैं, हमसे कैसे, नहीं, मैं बाबा आपकी वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, माला का मणका हूँ, विजयी मणका हूँ, मुझे भी आपकी तरह विजय माला का मणका बनना है, मैं भी आपके पास आएगी आए। बस इस तरह रह के जितनी हमारी वैराग्य स्थिति होगी ना, धीरे धीरे हर एक चीज से हम डिटैच अनुभव करते जाएंगे, उतना ही संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होते जाए। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। दिल की गहराइयों से भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी एक हाथ हिला करके भाई साहब जी को धन्यवाद देंगे। आज का जो टॉपिक था बहुत ही पावरफुल, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसी बनानी है, उसकी स्थिति कैसे बनानी है, भाई साहब ने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों से हम सभी को स्पष्टीकरण दी। और हम सभी हाथ हिला करके भाई साहब जी को ये भी कहेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि हम सभी इस स्थिति को जरूर प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
नहीं।